ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं मुकेश कुमार मिश्र। आरंभ में मुख्य समाचार शीर्षक। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा और नेपाली कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के बीच सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग और लापता कर दिए गए व्यक्तियों संबंधी छानबीन आयोग संबंधी विधेयक जल्द लाने की हुई सहमति। मार्च 6 को होने वाली संसद बैठक से सभामुख निर्वाचन प्रक्रिया आगे बढ़ाने की कांग्रेस संसदीय दल ने की मांग। देश के भौतिक विकास और नागरिकों की अपेक्षा पूरी करने के लिए अभी भी वैदेशिक सहायता जरूरी है। अर्थमंत्री डॉ खतेवड़ा का कथन और भारत में निर्भया मामले में दोषियों को फांसी देने के लिए 1 फरवरी को सुबह 6 बजे का वक्त किया गया तय। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड और नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा के बीच सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग और लापता कर दिए गए व्यक्तियों संबंधी छानबीन आयोग के संबंध में विधेयक जल्द लाने की सहमति हुई है। आज प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में हुए विचार विमर्श में संसद के चालू अधिवेशन द्वारा विधेयक लाकर शांति प्रक्रिया के बाकी काम पूरे करने की सहमति हुई। ये जानकारी नेकपा संसदीय दल के उपनेता सुभाष नेमवांग ने दी। प्रधानमंत्री ओली के प्रेस सलाहकार सूर्य थापा ने आज के विचार विमर्श को सकारात्मक बताते हुए शनिवार को फिर से आयोग के संबंध में विचार विमर्श होने की बात कही। मीडिया काउंसिल को संचार क्षेत्र का नियमन करने वाला अर्धन्यायिक निकाय बताते हुए सांसदों ने कहा कि काउंसिल की अध्यक्षता के लिए न्यायिक क्षेत्र के सक्षम व्यक्ति को लाया जाना चाहिए। विधायन व्यवस्थापन समिति में आज नेपाल मीडिया काउंसिल विधेयक 2075 के ऊपर दफावार विचार विमर्श के दौरान सांसदों ने काउंसिल की अध्यक्षता के लिए न्यायिक क्षेत्र के योग्य और अनुभवी व्यक्ति की नियुक्ति का प्रावधान विधेयक में समेटे जाने की बात पर जोर दिया। विचार विमर्श में संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय के सहसचिव ऋषिराम तिवारी ने कहा कि काउंसिल के अध्यक्ष की योग्यता के संदर्भ में सांसदों के संशोधन प्रस्ताव को स्वीकार किया जा सकता है। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्री घनश्याम भूसाल ने कृषि क्षेत्र के उत्पादों को बढ़ाने को लेकर सरकार को कटिबद्ध बताया। राष्ट्रीय सभा दीर्घकालीन विकास तथा सुशासन समिति द्वारा आज सिंह दरबार में बुलाई गई बैठक में मंत्री भूषाल ने कहा कि कानूनी और नीतिगत सुधार के साथ कृषि को समृद्धि का मुख्य आधार बनाने के उद्देश्य के साथ काम हो रहा है। बैठक में मंत्रालय के सचिव युवक ध्वज जीसी ने कहा कि सभी 7 प्रदेशों में विषादी परीक्षण की व्यवस्था की गई है और इससे अब निश्चिंत होकर कृषिजन्य सामग्रियों का उपयोग कर सकने का वातावरण तैयार हुआ है। नेपाली कांग्रेस ने प्रतिनिधि सभा की मार्च 6 को होने वाली बैठक में सभामुख निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। नेपाली कांग्रेस संसदीय दल की आज सिंहदरबार में हुई बैठक ने अलग अलग बहानों से संसद को अवरुद्ध न करने का सत्तारूढ़ दल से आग्रह किया है। साथ ही उससे अपने आंतरिक विवाद को केंद्रीय विषय बनाकर गैर जिम्मेदाराना क्रियाकलाप को बंद कर तत्काल प्रतिनिधि सभा की बैठक संचालन करने की मांग कांग्रेस संसदीय दल ने की है। इसके अलावा अमेरिकी सहयोग एमसीसी का तत्काल संसद से अनुमोदन करने की भी उसने सरकार से मांग की है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
14-15 बजारमा नयाँ के छैन। नेपाल टेलिकमका विभिन्न सेवाका अफरहरू सस्तो, साह्रै सस्तोमा खरिद गर्न परेमा *14-15 ह्यास डायल गर्नुपर्ने रहेछ, त्यही भएर कण्ठ पारिराख्या
हो र दाई।
त्यति मात्र हो र भाइ, नेपाल टेलिकमले विभिन्न समयमा ल्याउने विभिन्न अफरको बारेमा थाहा पाउन पनि *14-15 ह्यास डायल गर्नुपर्ने रहेछ नि त।
14-15
मलाई पनि कण्ठै भयो दाई।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। अर्थमंत्री डॉ युवराज खतेवड़ा ने कहा कि देश के भौतिक विकास और नागरिकों की बढ़ती अपेक्षा को पूरा करने के लिए वैदेशिक सहयोग जरूरी है। प्रदेश नंबर 1 के मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय द्वारा आज विराटनगर में आयोजित नेपाल सरकार और स्विट्जरलैंड सरकार के बीच समझौता हस्ताक्षर कार्यक्रम में अर्थमंत्री डॉ खतेवड़ा ने ये बात कही। मौके पर प्रदेश नंबर 1 के मुख्यमंत्री शेरधन राय ने कहा कि संघीयता क्रियान्वयन के तहत तीनों सरकारों के बीच समन्वय हो रहा है और स्विट्जरलैंड सरकार से मिलने वाले सहयोग से प्रदेश के विकास में अधिक मदद मिलेगी। शहरी विकास मंत्री गोकुल प्रसाद बासकोटा ने चालू आर्थिक वर्ष में संपन्न होने वाली परियोजनाओं को आगामी जेठ 15 गते के अंदर संपन्न करने का परियोजना प्रमुखों को निर्देश किया है। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग द्वारा आज काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री बास्कोटा ने कहा कि आर्थिक वर्ष के अंत में जल्दी जल्दी परियोजना के कामों को आगे बढ़ाने से अनियमितता होने की अधिक संभावना रहती है और काम भी स्तरीय नहीं हो पाता, इसलिए जेठ 15 से पहले ही काम सम्पन्न कर लेना बेहतर होगा। मंत्री बांसकोटा ने तराई के जिलों में संचालित विभिन्न परियोजनाओं के लिए तुरंत ही परियोजना प्रमुख और आवश्यक कर्मचारी नियुक्त करने का भी निर्देश किया। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराज मणि पोखरियाल ने कहा कि अगर विज्ञान और प्रविधि से संबंधित ज्ञान को जनता समक्ष पहुंचाया जाए तो देश विकास को सार्थक गति मिलेगी। मोहतरी के बर्देवास में बीपी कोयराला मेमोरियल प्लेनेटेरियम तथा ऑब्जर्वेटरी आयोजना द्वारा आयोजित खगोल विज्ञान तथा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान संबंधी 3 दिनों के कार्यक्रम में मंत्री पोखरियाल ने कहा कि देश के विकास के साथ ही दक्ष जनशक्ति तैयार करने के लिए विज्ञान में अभिरुचि बढ़ाने की जरूरत है। 3 दिनों के इस कार्यक्रम में मोहतरी, धनुषा, सरलाही, सिराहा, सप्तरी और सिंधुली समेत कुल 120 छात्रों की सहभागिता है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री भानुभक्त ढकाल ने कहा कि सरकार को ये कहने की छूट नहीं है कि अच्छे काम उसने किए हैं और बुरे काम दूसरों के कार्यकाल में हुए हैं। जीपी कोयराला राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रश्वास उपचार केंद्र तनहु में आज आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन करते हुए मंत्री ढकाल ने कहा कि 5 सालों तक पूरी सत्ता चलाने वाली नेकपा नेतृत्व की सरकार को यश और अपयश दोनों का सामना करना होगा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी से आज नेपाल भ्रमण में रहे जापान के पार्लियामेंट्री वॉइस मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स नाकायामा तारोहितो ने शिष्टाचार भेंट की। राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में की गई इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच संबंधों, आपसी हितों आदि विषयों पर विचार विमर्श हुआ। नारायणहिटी दरबार संग्रहालय में निर्मित गणतंत्र स्मारक को संचालन के लिए हस्तांतरित किया गया है। शहरी विकास मंत्री गोकुल प्रसाद बांसकोटा और संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश कुमार भट्टाराय की उपस्थिति में शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग के महानिदेशक मणिराम गेलाल ने स्मारक को व्यवस्थापन एवं संचालन के लिए समिति के कार्यकारी निदेशक भेष नारायण दहाल को हस्तांतरित किया। मौके पर मंत्री बांसकोटा ने कहा कि स्मारक लोकतांत्रिक गणतंत्र के योगदान के इतिहास को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करेगा। इसी तरह संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री भट्टाराय ने कहा कि स्मारक को नेपाल भ्रमण वर्ष के अवसर पर महत्वपूर्ण गंतव्य के रूप में विकसित किया जाएगा। स्मारक हस्तांतरित किया गया जरूर है, लेकिन स्मारक का निर्माण अभी भी संपन्न नहीं हुआ है, इसलिए इसे सर्वसाधारण के लिए 2077 जेठ 15 गति के दिन गणतंत्र दिवस के अवसर पर खोला जाएगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने कहा कि शासक वर्ग द्वारा अपना वर्चस्व कायम रखने के हिसाब से लाई गई संघीयता से शोषित पीड़ित वर्गों का उत्थान संभव नहीं है। पार्टी द्वारा आज से शुरू किए गए 3 महीने के संगठन विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण अभियान का जनकपुर में शुभारंभ करते हुए अध्यक्ष यादव ने कहा, संविधान का संशोधन न होने तक मधेशी, आदिवासी, जनजाति, दलित, मुस्लिम और महिला स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर सकेंगे। आगे उन्होंने बताया कि इसके लिए फिर से संघर्ष की जरूरत है और इसीलिए पार्टी संगठन विस्तार और सुदृढ़ीकरण अभियान शुरू हुआ है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत में निर्भया मामले में दोषियों के खिलाफ नया डेथ वारंट जारी किया गया है। पटियाला कोर्ट ने अब दोषियों को फांसी देने के लिए 1 फरवरी को सुबह 6 बजे का वक्त तय किया है। इससे पहले इन चारों दोषियों को 22 जनवरी की सुबह 7 बजे फांसी दी जानी थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने बुधवार को अदालत को बताया था कि एक दोषी की दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित है, इसलिए 22 जनवरी को फांसी नहीं दी जा सकती। आज चारों दोषियों में एक मुकेश सिंह की दया याचिका को राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया है। मुकेश सिंह के अलावा विनय शर्मा, अक्षय कुमार सिंह और पवन गुप्ता को इस मामले में फांसी दी जानी है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 13 से 15 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 9.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार शीर्षक एक बार फिर। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा और नेपाली कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के बीच सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग और लापता कर दिए गए व्यक्तियों के संबंधी छानबीन आयोग संबंधी विधेयक जल्द लाने की हुई सहमति। मार्च 6 को होने वाली संसद बैठक से सभामुख निर्वाचन प्रक्रिया आगे बढ़ाने की कांग्रेस संसदीय दल ने की मांग। देश के भौतिक विकास और नागरिकों की अपेक्षा पूरी करने के लिए अभी भी वैदेशिक सहायता जरूरी है, अर्थमंत्री डॉ खतीवड़ा का कथन। और भारत में निर्भया मामले में दोषियों को फांसी देने के लिए 1 फरवरी को सुबह 6 बजे का वक्त किया गया तय। इसी के साथ हिंदी समाचार से मुझे अनुमति दीजिए, सुनते रहिए रेडियो नेपाल। नमस्कार, शुभरात्रि।